ओम शांति। आज भट्टी का शुरुआत है। सबसे पहले दीदी जी, जिस भट्टी के लिए उन्होंने सारा आयोजन किया है, आपको बहुत अच्छे से क्लासेस मिले, तपस्या हो, जिसका फुल प्रयास मैंने देखा दीदी को कि कैसे लगन से करती है, आने वाले बहुत ही अच्छा तपस्या करके, जैसे ही नाम है बेहद की वैराग्य वृद्धि, अंतिम पुरुषार्थ योग तपस्या भक्ति, तो उसको सार्थक करके वो बेहद की वैराग्य वृत्ति जागृत करके तपस्यारत स्थिति कैसे बनानी, उसका प्रयास दीदी कैसे करती है, कल मैंने बहुत ही अच्छे से देखा, अनुभव किया। आज हम सबकी प्यारी दीदी शीलू दीदी जी सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, आपके परिचित हैं, आपका एक मधुर भाषा और ज्ञान की देवी, सच में महान विदुषी आप हैं। हमारी यज्ञ की सेवा में जैसे ही वृद्धि हुई, टीवी के माध्यम से जो जन जन तक बाबा का संदेश पहुंचा, उस सेवा की प्रथम नींव आप हैं। आपके माध्यम से ही, टीवी के माध्यम से बाबा का संदेश जन जन तक पहुंचता रहा, इसलिए दीदी को कहते थे टीवी वाली दीदी, क्योंकि उस जमाने में टीवी बहुत कम होती थी उस समय। और आप घर बैठे हर की पैदी हैं, हर की पैदी पे जाकर के पावन बनने के लिए स्नान करते हैं भक्त लोग। बाबा ने वो टाइटल आपको दिया है कि मधुबन में रह करके पतित पावन परमात्मा की आप हर की पैदी हैं, यहाँ ही बैठ करके सबको पतित से पावन बनने का ज्ञान देकर के उनको पावन बनाने वाली पावन देवी है। तो आज दीदी के मुखारविंद से हम भट्टी का लक्ष्य उद्देश्य सुनेंगे। आदरणीय दीदी जी,
आप भी अपना परिचय दीजिए, आप भी अपना परिचय दीजिए।
रहूंगी तो देती रहूंगी दीदी, मुझे ये सेवा मिली है भट्टी की, और खास दीदी जी ने बुलाया है कि आपके साथ भट्टी भी करूंगी और दीदी जैसे कहेंगे वो सेवा भी करूंगी।
परिचय दो ना, कहाँ से वो नाम बताइए।
शरीर का नाम विजय लक्ष्मी है, दादियां हमको प्यार से विजय कहते थे तो सभी विजय के नाम से ही जानते हैं। 42 वर्षों से सेवा में समर्पित हूँ। दादी जी ने जहाँ जहाँ भेजा वहाँ सेवाएं की, सबसे पहले देहरादून हरिद्वार में सेवाएं की, उसके बाद राजस्थान में मधुबन के इर्द गिर्द सेवाएं किया, वर्तमान डूंगरपुर और उदयपुर प्रतापनगर ये सेवाएं संभाल रही हूँ
राजस्थान में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत भाग्यशाली आत्माएं हो जो बाबा के घर मधुबन में भट्टी करने आए हो। कैथल, कैथल से आए हैं और बहादुरगढ़ से। तो जो बहादुरगढ़ से आए हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा, और जो कैथल से आए हैं वो हाथ उठाएं। वो सारा झुंड बहादुरगढ़ की टीचर्स भी आई है कोई? बहादुरगढ़ की कोई और टीचर नहीं है, आप ही आए सुरेंद्र भाई। और कैथल की टीचर्स पहने, तो आप जैसे ही मधुबन पहुंचे और आपने अकोमोडेशन लिया, आपको बाबा ने ये विजय माला पहनाई। पहना ना सभी ने, माताओं ने नहीं पहनी है? पहनी है, उन्होंने नहीं पहनी। आपके ऊपर ठप्पा लग गया। कौन सा ठप्पा लगा? बेहद की वैराग्य वृत्ति अंतिम पुरुषार्थ योग तपस्या वठी। अभी समय की समीपता को देखते हुए बाबा ने हमें तीव्र पुरुषार्थ करने की कितनी युक्तियां बताई है। समय कम होता जाता है पर मंजिल अभी बाकी है। वैसे तो अगर कोई पूछते हैं कि आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है, तो हम एक वाक्य में क्या सुनाते हैं कि यहाँ जो आते हैं उनको यही कहा जाता है कि तुम्हें अब मनुष्य से देवता बनना है, या मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। तो मनुष्य से देवता कहने में तो कितना सहज है, और बाबा कई बार कहते हैं बच्चे उसके लिए पढ़ाई भी बहुत सहज है। फिर बाबा कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति, तो मानो जैसे सेकंड में मिल गई, हाँ देवता बन गए। लेकिन इतनी सहज है जो सेकंड में हो जाए? क्योंकि यात्रा तो लंबी है ना। बाबा का बनने से पहले हम क्या थे? कहेंगे शूद्र थे। शूद्र कहेंगे। क्यों शूद्र कहेंगे? क्योंकि शूद्र शब्द कहाँ से आया? क्षुद्र, क्षुद्र माना नीच। तो जैसे हम जो विचार मन में करते थे वो विकारों के वश ही विचार होते थे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष नफरत वैर दुश्मनी, वे मनस्य क्या क्या जितनी भी विकृतियां हो वो सब आज मनुष्य के मन में है। हमारे मन में भी थी, सबके मन में थी। परंतु जैसे ही बाबा ने अपने पास बुलाया, कोर्स किया हमने, तो फिर क्या हुआ? धीरे 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 हमारे अंदर से ये बुराइयां निकलने लगी, और हमने अपने आप को कौन सा ठप्पा लगाया कि अभी हम शूद्र से ब्राह्मण, अभी नहीं देवता बने हैं। शूद्र से पहले क्या बनते हैं? ब्राह्मण बनते हैं। देवता तो बाद में बनेंगे ना, शूद्र डायरेक्टली तो देवता नहीं बनेंगे ना। तो शूद्र से पहले क्या बनते हैं? ब्राह्मण। ब्राह्मण किसको कहेंगे? बाबा उसके लिए भी हमको क्वालिटीज बताते हैं, उसके लिए भी क्या विशेषताएं चाहिए ब्राह्मण बनने के लिए भी। पहले तो ब्राह्मण माना किसको कहेंगे? ब्राह्मण, ब्राह्मण माना जिसके पास ब्रह्म ज्ञान हो। ब्रह्म ज्ञान है तो ब्रह्मा, सारी ब्रह्मा से संबंधित है। तो जिसके पास ईश्वरीय ज्ञान हो, तो हम सब ने कोर्स किया, ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया, खुद को पहचाना, परमात्मा को पहचाना, कर्मों की गति पहचानी, काल चक्र पहचाना, अभी कौन सा समय चल रहा है ये पहचान मिली हमें। तो ये जो हमें पहचान मिली, ये पढ़ाई हमें मिली जिससे हम स्टूडेंट बन गए, तो हम सब क्या कहते, चाहे बूढ़े बूढ़े भी हैं तो भी क्या कहते, हम गॉडली स्टूडेंट है बोलते ना हाँ माताएं, कौन हो सभी गॉडली स्टूडेंट। हाँ इंग्लिश शब्द बोलते ना तो कई समझते इनको इंग्लिश तो बहुत आती होगी, हाँ इंग्लिश में बोलते हैं। फिर कई माताएं कहती हैं हम तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं, हाँ बूढ़ी माताएं और यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाती है, लेकिन ये भी एक नशा है। तो हम ईश्वरीय विद्यार्थी बन जाते हैं, ईश्वर द्वारा हमें वो पढ़ाई मिलती है, स्वयं भगवान हमारा टीचर बन जाता है। बाबा रोज नशा चढ़ाते हैं, तुमको पढ़ाने वाला कौन, स्वयं भगवान। तो इसीलिए ये ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने वाले हम सच्चे ब्राह्मण बन जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा मुख वंशावली बन जाते हैं। ब्रह्मा के मुख से शिव बाबा ने जो ज्ञान दिया उनको सुनने वाले धारण करने वाले वो ब्राह्मण बन जाते हैं। फिर ब्राह्मण में की और क्वालिटीज क्या है, दूसरी क्वालिटी है ब्रह्मा भोजन। तो फिर आहार भी शुद्ध बनाना शुरू किया, पहले तो पता नहीं क्या क्या खाते होंगे। फिर जैसे ही बाबा का ज्ञान मिला और हमें कहा गया कि अभी ब्रह्मा भोजन स्वीकार करना है, जो भी आपका भोजन हो वो शुद्ध शाकाहारी, पर केवल शुद्ध शाकाहारी नहीं साथ साथ परमात्मा की याद में पकाया हुआ, फिर भोग लगाया हुआ, शिव बाबा को अर्पित किया हुआ, फिर उसको स्वीकार करना है। तो जैसे शिव बाबा हमें दे रहा है भोजन, तो ज्ञान का भोजन भी वही देते हैं, और वो भोजन जो स्वीकार करते हैं वो भी शिव बाबा के द्वारा प्रसाद हमको मिलता है, ऐसे ही कहेंगे ना। तो फिर ब्रह्मा भोजन, तो ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म भोज। फिर तीसरा ब्रह्मा से क्या रिलेटेड है, ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला उठना। पहले तो पता नहीं कितने बजे उठते होंगे, वैसे तो जल्दी उठ जाते होंगे, लेकिन ये तो कभी नहीं सोचा था कि उठकर हमको शिव बाबा को याद करना है। न जाने क्या क्या करते होंगे सुबह उठ कर के, भी भक्ति भी करते होंगे, लेकिन बाबा ने हमें क्या कहा, अमृत वेला उठ करके मुझे याद करो। और हमारी बड़ी दीदी जी बहुत प्यार से कहती थी, सवेरे सवेरे जब उठो ना तो 5 केले खाओ। खा सकते हो, हाँ जो खा सकता है हाथ उठाओ, 5 केले। अच्छा सारे खा सकते हैं, कौन से 5 केले जी? हाँ कुछ एक को पता है आप लोगों को इसका राज, 5 जिनको नहीं पता है वो हाथ उठाए, देखो हाथ उठा रहे हैं, नहीं पता। तो बड़ी दीदी क्या करती थी, सुबह सुबह जब उठो अमृत वेले तो सबसे पहले 5 केले खाओ, तो आपको सारे दिन की इतनी शक्ति मिल जाएगी, हाँ क्योंकि सवेरे सवेरे आपने इतनी अच्छी खुराक खा ली। तो कौन से 5 केले? हाँ पहला केला है अकेले आए हैं, या एक केला। फिर दूसरा केला अकेले जाना है, हाँ किसी को ले आई था, जन्म लिया तो किसी को साथ में लाए थे, और जाएंगे तो किसी को ले जाएंगे नहीं, तो अकेले आए थे अकेले जाना है। तीसरा केला अकेले में, अकेला माना और कोई, हाँ किसी के साथ नहीं, बस मैं और बाबा बस अकेला। तो अकेले में अकेला होकर एकदम एकांत में अकेला होकर और अकेले को याद करना है। हो गए 5 केले? कौन बोलेगा बताओ, आप बताओ कौन से 5 केले? ये याद उठा, तो अकेले आए हैं अकेले जाना है, अकेले में अकेला होकर अकेले को याद करना है। अभी सबको याद हो गया ना, तो अमृत वेले जब उठो तो पहले पहले ये संकल्प करो। तो इसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना, उस समय सारी दुनिया सोई हुई है, सब जो विकारी मनुष्य वो भी 4 बजे तो सब सोई जाते होंगे। तो इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त का समय, वो अमृत वेले का समय बहुत ही शुभ समय होता है। जब कहते हैं ना, जब योगी जागते हैं तो भोगी सोते हैं, या भोगी सोते हैं 4 बजे और योगी 4 बजे 3 बजे उठ जाते हैं, तो उस समय भोगियों के सोने का समय और योगियों के जागने का समय। तो इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त, तो ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म भोज, ब्रह्म मुहूर्त, फिर चौथा है ब्रह्मचर्य। हाँ, तो बाबा ने पवित्रता की धारणा कराई। बाबा पवित्रता पर कितना जोर देते हैं, पवित्रता में कितनी शक्ति है। बस एक जन्म बाबा कहते हैं मेरे खातिर पवित्र बनो, मेरे खातिर। भगवान हाथ झोली खोल कर हमारे आगे कहते हैं कि पवित्र बनो मेरे खातिर। तो पवित्र बनने में फायदा तो हमारा ही है, शिव बाबा को क्या फायदा होगा, उनको तो कोई फायदा चाहिए नहीं, लेकिन हमारे लिए फायदा है। क्योंकि अभी हम पवित्र बनते हैं तो हम कितना विश्व का परिवर्तन करते हैं, संसार को ही बदल देते हैं इस पवित्रता के बल से। बाबा ने उस दिन भी कहा सन्यासी भी पवित्र बनते हैं, लेकिन वो श्रीमत अनुसार पवित्र नहीं बनते हैं। वो तो चलो वैराग आ गया, हाँ, तो इसीलिए पवित्र बनते हैं, परंतु श्रीमत हमको मिलती है कि बच्चे तुमको पवित्र बनना है। तो भगवान ने श्रीमत दी और हमने आज्ञा का पालन किया, ये व्रत अपनाया। तो ये चौथा हो गया ब्रह्मचर्य। फिर बाबा कहते ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्माचार्य, तो ब्रह्मा ने जो कार्य किया वो हमें करना है। तो ब्रह्मा ने क्या कार्य किया, जैसे ही शिव बाबा ने उनको कहा कि अभी आपकी जो भी चल अचल प्रॉपर्टी है वो सब माताओं बहनों के आगे सुपुर्द कर दो, तो विल लिख कर दो। और बाबा ने बिना कुछ और सोचे बस जो शिव बाबा ने कहा उसको किया। और देखो एक बीज बाबा ने अपने तन मन धन का रोपा, और आज देखो वो वट वृक्ष बन करके सारे विश्व में 140 देशों में ये वृक्ष फैला हुआ है। हाँ सोचो, एक बीज बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने अपना लौकिक जो भी उसका था वो सब माताओं बहनों के आगे समर्पित किया और माताओं बहनों को आगे किया। तो माता गुरु बन गई, हाँ माता गुरु बन गई, स्वर्ग का द्वार बन गई। सन्यासी क्या कहते थे कि स्त्री तो नरक का द्वार है, और बाबा क्या कहते हैं, हाँ नशा चढ़ता है माताओं को देखो। हाँ भाई लोग, आप लोग भी खुश होते हो ना, भाई भी खुश होते हैं जब माताओं की महिमा सुनते हैं। पहले तो पुरुष प्रधान समाज में तो माताओं की महिमा नहीं सुनना चाहते पुरुष लोग, लेकिन बाबा के बच्चे जो बनते हैं वो सुनना चाहते ना माताओं की महिमा, हाँ सब सुनते हैं। तो माताओं बहनों को आगे रखने से देखो घर भी स्वर्ग हो जाता है, और दुनिया तो स्वर्ग हो ही जाती है, परिवार भी स्वर्ग बन गया तो फिर सारा संसार स्वर्ग बन जाता है। तो ब्रह्मचर्य, फिर ब्रह्माचार्य, तो ब्रह्माचरण, ब्रह्मा ने जो आचरण किया वो हम फॉलो करते हैं। फिर शास्त्रों में भी ब्राह्मणों की बहुत विशेषताएं बताई गई है, कोई भी शुभ कार्य होता है तो उसमें ब्राह्मण जरूर चाहिए। और उस दिन भी बाबा ने मुरली में काशी बाबा ने आके यज्ञ रचा, तो यज्ञ में तो ब्राह्मण चाहिए, बिना ब्राह्मणों के यज्ञ कैसे चलेगा, यज्ञ वो चाहिए ना। तो इसीलिए ब्रह्मा में प्रवेश करके जो ज्ञान जिनको मिला वो ब्राह्मण बन गए। तो ब्राह्मणों द्वारा ये यज्ञ चलता है, आज भी बाबा के मुरली में था। कई लोग पूछते ना आपका ये खर्चा कैसे चलता है, तो क्या जवाब देते हैं, कैसे चलता है, हमारे ही तन मन धन से, हम कोई डोनेशन फंड या कुछ ऐसे नहीं जाके भीख मांगते हैं, लेकिन हमारे अपने ही तन मन धन से ये खर्चा चलता है। हाँ, जैसे लौकिक में होता है ना, अभी किसी परिवार में आप जाओ और आप जो जो मुख्य है, मुखिया, उससे पूछो कि आपके घर का खर्चा कैसे चलता है। वो कहता है ये कोई पूछने की बात है, मेरे चार बेटे हैं, इतना कमाते हैं, मेरे बहुएं हैं, मेरे पोते दोते हैं, इतना अच्छा कमाते हैं, तो हम कोई बाहर से भीख थोड़ी मांगते हैं हमारा घर का खर्चा चलने लिए। हमारे घर में बहुत कमाने वाले हैं, नशा चढ़ता है तो हम भी के नशे से क्या कहते हैं, सब कमाऊ पुत्र है ना, कमाऊ पुत्र भी है, कमाऊ पुत्रियां भी है ना, सभी सब। अब तो माताओं को तो विशेष देखते हैं, बाबा कितना प्यार करते थे, बहुत गरीब गरीब माताएं भी आती थी, गांव गांव से आती थी मधुबन में, तो पोटली में चावल लाती थी, वो ये आटा लाती थी, चीनी लाती थी, कुछ छोटा छोटा वो पुटली बना करके लाती थी और बाबा के आगे रखती थी। तो बाबा उसको क्या करते थे, आंखों पर रखते थे, और वो और आंखों पर और सिर पर रखते थे। तो बाबा कहते थे कि देखो इतना बाबा के लिए लाते हैं, अब उससे क्या होगा, इतना सा लाने से क्या होगा, लेकिन ये देखो विश्व महारानी बनेगी। मनी ऑर्डर करते थे, मकान बनता था, मनी ऑर्डर करते थे, कितना, एक रुपया, उस समय तो एक रुपया भी बहुत था, और उसने पता नहीं कितना मनी ऑर्डर पर खर्चा भी हुआ होगा। तो बाबा को कहते, बाबा एक ईंट लगा देना। तो बाबा क्या कहते थे, हाँ इस एक ईंट क्या, देखो आपको महल मिल जाएगा सतयुग में। तो अपने ही बाबा के बच्चे ही सब चलाते हैं। फिर विनाश, इस यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है, विनाश की ज्वाला प्रज्वलित होती है। कैसे, जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए और ये कार्य शुरू किया, यज्ञ स्थापित किया, उसी समय विनाश का भी कार्य शुरू हुआ, विनाश का भी कार्य शुरू हुआ। मानो ब्रह्मा का और शंकर का पाठ दोनों का एक साथ शुरू हुआ। तो देखो कैसे दूसरा विश्व युद्ध हुआ, एटम बॉम्ब गिराया, और कैसे ग्रह युद्ध हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, कैसे रक्त की नदियां बही। हाँ, जब अमेरिका ने बॉम्ब गिराया जापान पर 1945 में, तब तो ये यज्ञ कराची में ही था। तो बाबा से कईयों ने पूछा, बाबा ये विनाश है क्या, इतना बॉम्ब गिराया है, सारा शहर का शहर खत्म हो गया, लाखों लाखों लोग मर गए। तो बाबा ने कहा ये तो ट्रेलर है, कोई बड़ी पिक्चर दिखाते ना, उसके पहले ट्रेलर दिखाते कि ये पिक्चर में होगा, तो ये तो ट्रेलर है। तो अणु युद्ध का एक छोटा सा अंश दिखाया, फिर ग्रह, फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो उस समय भी कितनी रक्त की नदियां बही, इतनी रक्त की नदियां बही, हजारों क्या लाखों लोग मारे गए, खून ही खून चारों तरफ। तो उस समय बाबा से पूछा, बाबा ये क्या यही विनाश है, बाबा कितने ये ट्रेलर है। तो अणु युद्ध, ग्रह युद्ध, और फिर तीसरा प्राकृतिक आपदाएं। तो प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत आई उस समय, उन्हीं सालों में जब बाबा का यज्ञ चल रहा था कराची में। तो बाबा से पूछते थे, बाबा ये विनाश तो है, बाबा कहते नहीं ये ट्रेलर है। लेकिन ब्रह्मा बाबा को एक ठग से वैराग्य कैसे आ गया, जब बाबा ने ये सब दृश्य में देखा, साक्षात्कार में देखा, तीन प्रकार से युद्ध चल रहा है, तीन प्रकार से विनाश, अणु युद्ध, ग्रह युद्ध और प्राकृतिक आपदाएं। तो बाबा को एकदम से वैराग आ गया इस संसार से, और हीरे जो जिनका बाबा व्यापार करते थे, तो बाबा को वो पत्थर दिखाई देने लगे। तभी सारा सब कुछ छोड़ के कैसे बाबा ने तपस्या शुरू की, तो और फिर ये यज्ञ रचा। तो इसीलिए शिव बाबा ने आकर के ये यज्ञ रचा। तो हम ब्राह्मणों का भी क्या कर्तव्य है, इस यज्ञ की पालना करना है ना, अपने तन मन धन से। तो वो तो यज्ञ को कैसे चलाते हैं, जव तिल घी डालते ना यज्ञ के लिए। तो हमारा जव तिल घी कौन सा है, जव कौन सा है? ये शरीर है ना, शरीर। और तिल कौन सा है? मन। तो तन मन और घी माना धन। तो तन मन धन से हम ये कार्य कर रहे हैं और ये यज्ञ चल रहा है और ब्राह्मण कहलाते हैं। फिर बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की और निशानी क्या है? ब्राह्मण वो जो पढ़े और पढ़ाए। हमेशा ब्राह्मणों के कच्छ में कुरम, बाबा कहते थे कुरम, कुरम माना किताब। तो जो ब्राह्मण होते हैं ना, तो वो उनकी हमेशा कोई ना कोई शास्त्र उनके वो ऐसे बगल में होता है, वो पढ़ते रहते हैं, सुनते पढ़ते भी हैं और दूसरों को भी सुनाते, शास्त्र सुनाते, मानो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। क्योंकि समाज में चार वर्ण हो गए जो समाज को संभाल रहे थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वै शूद्र। तो ब्राह्मण उसको कहते थे जो धर्म की रक्षा करते हैं, क्षत्रिय उनको कहते थे जो देश की रक्षा करते हैं। अभी भी देखो हमारे सिपाही है ना बॉर्डर पर, कैसे रक्षा कर रहे हैं हमारे देश की। अगर ये रक्षक न होते तो क्या होता? दुश्मन हमारे देश पर वार कर देता। तो इसीलिए रक्षक है वो क्षत्रिय माना देश की रक्षा करने वाले। और वैश्य उनको कहेंगे जो पेट की रक्षा करते हैं ना, धंधा बिजनेस जो करते हैं वो वैश्य। फिर शूद्र किसको कहेंगे? जो नौकरी करते हैं। अभी भी देखो कहेंगे सब शूद्र ही है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो क्या उसको कहते? गवर्नमेंट सर्वेंट। तो सर्वेंट माना सर्वेंट माना नौकरी करने वाला, किसी के अधीन, तो मालिक तो नहीं हुआ ना। तो इसीलिए शूद्र माना जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करे, उसको शूद्र माना वो नौकर। तो ये समाज को ठीक ढंग से चलाने के लिए ही है। लेकिन जहाँ विराट रूप आता है ना, बाबा विराट रूप की बात करते हैं, उसमें देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, ब्राह्मण नहीं है। तो देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र और उसकी कैसे भेंट की है? ये शरीर के साथ। देवता माना चेहरा, चेहरा, और क्षत्रिय माना भुजाएं, हाँ ये सा भाग, और उस और वैश्य माना पेट, तो पेट का भाग, और शूद्र माना टांगे, टांगे पैर। तो ये जैसे ये चार भाग हो गए। तो इसीलिए देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो बाबा भी कहते हैं ना ये चेहरा आपका जो है वो कैसा होना चाहिए? सूरत भले मनुष्य की है लेकिन सीरत देवताओं जैसे। तो इसीलिए बाबा ने हमें सच्चा ब्राह्मण बनाया। तो पढ़ो और पढ़ाओ, यज्ञ करो और यज्ञ कराओ, स्वयं स्वाहा स्वाहा करो और दूसरों से स्वाहा स्वाहा कराओ। सबको क्या कहते हुए अपने विकारों को स्वाहा करो। हमारे पास शिविर में आते हैं ना, तो कई हमसे पूछते हैं बहन जी आपके यहाँ की फीस क्या है? फीस लेते हैं ना स्कूल में, फीस लेते हैं। तो हम कहते हैं यहाँ की फीस है 5 खोटे पैसे। तो फिर कहते हैं 5 खोटे पैसे है आपके पास देने के लिए, तैयार है? तो सब हाथ उठाते हैं, हाँ 5 खोटे पैसे देंगे। कौन से खोटे पैसे? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये खोटे पैसे। फिर कहते खोटे पैसे देके जाओ और एक आना लेकर जाओ। फिर वो कहते एक आना का मतलब क्या है? तो पहले जमाने में इतने 16 आना, रुपए में 16 आना होते थे। तो एक आना लेके जाओ माना एक संकल्प करके जाओ कि एक बार रोज सेंटर पर जाना है। तो माना आना माना सेंटर पर जाना, तो एक बार रोज जाना। और बाबा भी क्या कहते हैं, बस सुबह सुबह पढ़ाई पढ़ो आधा पौना घंटा, फिर सारा दिन अपने कार्य में लगे रहो, पर बाबा की याद में रहो। हर कर्म कर्म योगी बन के कर्म भी करो और बाबा को याद भी करो। तो इसीलिए पढ़ना और पढ़ाना और धर्म की रक्षा करना, बाबा को याद करना, अपने जीवन को योगी पवित्र बनाना, ये ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण तो बन गए, सभी से पूछेंगे भाई धारणाएं हैं, तो आप सब कहेंगे हाँ सब ब्रह्म बाबा की याद में रहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन खाते हैं, बाबा की याद में पकाया हुआ। ऐसे कोई है जो ये सब नहीं करता है? सब करते ना, तभी तो मधुबन में आए हैं। हाँ, तो इसीलिए ये तो ठीक है। अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे, क्योंकि बाबा ने हमें तो बहुत बड़ा उद्देश्य दिया है, पर उस उद्देश्य तक, देवता बनने तक कई छोटे छोटे लक्ष्य है ना। तो पहला लक्ष्य क्या था, ब्राह्मण बनना। अब दूसरा लक्ष्य हमको क्या मिला है कि जो ब्रह्मा बाबा ने किया ना, वो हमको भी करना है। इसलिए देखो, आपने कई ऐसे किताबें आपने पढ़ी होगी ना, ब्रह्मा बाबा के 10 कदम, ब्रह्मा बाबा के 20 कदम, 25 कदम। तो ब्रह्मा बाबा की क्या क्या विशेषताएं थी, वो विशेषताओं को हमें धारण करना है, ब्रह्मा बाबा के कदमों पर चलना है, जिसको बाबा मुरली में कहते हैं सन शोज फादर। बच्चा अपने बाप का शो करता है। अगर बच्चा जो कर्म करे अपने उस पिता का शो करे, जो लोग कहे किसका बच्चा है, तो पिता का नाम रोशन हो। बाबा कई बार कहते हैं मेरी दाढ़ी की लाज रखना, ब्रह्मा बाबा की भी दाढ़ी की लाज रखना। शिव बाबा की कहावत है कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना है, तो सन शो स्वादर, तो ब्रह्मा बाबा का शो निकालना। ऐसा कोई कर्म नहीं करो जो बाबा का नाम बदनाम करो। तो बाबा शिव ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना, उनकी कदमों पर चलना है, और शिव बाबा को याद करना है। तो सी फादर, सी माना देखो, तो शिव बाबा को देखो, उनको याद करो और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। तो कैसे फॉलो करेंगे, कोई भी कर्म करते हो, कोई भी बोल बोलते हो, कोई बात सोचते हो, तो सोचने से पहले भी सोचो, क्या ये सोच ब्रह्मा बाबा की हो सकते हैं। कहते हैं सोचने से पहले भी सोचो, मैं क्या सोचने जा रहा हूं। अगर ब्रह्मा बाबा ऐसे कभी नहीं सोचेंगे तो मुझे भी नहीं सोचना है, ब्रह्मा बाबा ऐसे कभी नहीं कहेंगे तो मुझे भी नहीं कहना है। तो ब्रह्मा बाबा को सामने लाओ, वो जो करते मैं भी वही करूंगा या करूंगी, ये है ब्रह्मा बाबा के कदमों पर चलना। तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है और शिव बाबा को याद करना है। फिर और आगे चलो, हाँ, तो ब्राह्मण तो बन गए, ब्रह्मा बाबा के कदमों पर चले। फिर ब्रह्मा बाबा ने जो किया उसके आधार से ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बन गए। अब संपूर्ण बने भी कितने साल हो गए, 55 साल हो गए। 18 जनवरी 1969 में बाबा संपूर्ण बने। अब 2025 आ गया, तो 55 साल से भी ज्यादा समय बाबा को संपन्न बने हुए हैं, और बाबा वतन में हमारा इंतजार कर रहे हैं। जब यज्ञ शुरू हुआ ना, तो उस समय बाबा कहते थे बच्चे हम सदा साथ रहेंगे और साथ चलेंगे, साथ रहेंगे और साथ चलेंगे। तो बच्चों ने क्या सोचा कि बाबा कभी शरीर छोड़ेगा ही नहीं, साथ में ही रहेंगे, सब साथ में ही रहेंगे और सब साथ में चले जाएंगे वतन में। फिर सबसे पहले तो मम्मा ने शरीर छोड़ा, अरे बाबा ने तो कहा सब साथ रहेंगे, सब साथ चलेंगे, तो मम्मा चली गई। तब बाबा ने कहा नहीं, मम्मा चली नहीं गई है, वो एडवांस पार्टी की शुरुआत करने गई है। क्योंकि मम्मा के जाने के बाद एडवांस पार्टी शुरू हुई, उसके पहले बाबा एडवांस पार्टी शब्द नहीं बोलते थे। तो मम्मा यहाँ भी लीडर थी और एडवांस पार्टी की भी लीडर बनी। तो एडवांस पार्टी शुरू हो गई, फिर मम्मा गई, फिर उसके बाद ब्रह्मा बाबा साकार थे, वो भी चली गए। तो कईयों ने सोचा ब्रह्मा बाबा गए माना खत्म, सब विनाश। फिर बाबा ने कहा नहीं, अभी तो बहुत सेवा बढ़ेगी, बहुत सेवा बढ़ेगी। अभी तक तो जो सेवा चली थी वो तो चीटी मार्ग की सेवा थी, और अभी तो विहंग मार्ग की सेवा चलेगी। तो और ही हम देखते हैं कि ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे तो कितने थोड़े सेंटर थे, और बाबा के अव्यक्त होने के बाद कितने सेंटर बढ़ गए। तो पहले चीटी मार्ग की सेवा थी, चीटी की चाल कैसी होती है, हाँ, कितना धीरे धीरे, और विहंग माना पक्षी, जैसे पक्षी उड़ता है ना, तो कितनी उसकी स्पीड होती है, तो विहंग मार्ग। और सचमुच उसके बाद कैसे भी देश की सेवाएं शुरू हुई, बाबा के अव्यक्त होने के बाद इतने सारे बाबा के अपने अपने भवन बन गए। पहले तो कोई भी भवन अपना नहीं था, सब किराए के मकान ही थे, पर धीरे धीरे अभी तो देखो रिट्रीट सेंटर क्या 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 बन गए हैं, सब कुछ इतना बड़ा विशाल हो गया है, इतना बड़ा शांति वन बन गया है, कहाँ कहाँ बाबा के परिसर है, क्या इतना बड़ा कार्य हो रहा है। और फिर हमारी दादियां भी गई, लेकिन दादियां गई वो भी देखो उनके जाने के बाद और सेवाएं बढ़ गई, तो वो गई थोड़ी, सब हमारा इंतजार कर रही है, इसीलिए बाबा भी हमको कहते हैं, बाबा भी इंतजार कर रहे हैं, एडवांस पार्टी पूछ रही है कि कब तक, हाँ प्रकृति भी पूछ रही है कब तक, कब तैयार होंगे। तो बाबा फिर बच्चों से पूछते हैं कब तैयार होंगे, हाँ कब तैयार होंगे, तो फिर बच्चे क्या कहते हैं, बाबा हाँ बाबा डेट पूछते हैं, डेट बताओ, तो बाबा को बच्चे कहते हैं बाबा आप डेट बताओ, अब बाबा डेट बताए तो सब तैयार हो जाएंगे नहीं तो किसको डेट बतानी है, बच्चों को बतानी है, क्योंकि जब जब तक बच्चे तैयार नहीं हुए हैं तब तक विनाश कैसे होगा। अभी भी देखो चिंगारी लगी फिर रुक गई, क्यों रुक गई, नहीं तो भारत तो पूरा आक्रमण कर सकता था, अभी इतना शौर्य है, भारत की शक्ति है ना बहुत है, तो कई पूछते क्यों भारत क्यों इस ये युद्ध विराम कर दिया, क्यों छोड़ दिया, क्यों रोक दिया, बढ़ाना चाहिए, पाकिस्तान को ले लेना चाहिए, लेकिन बच्चे तैयार नहीं हुए सारा दोष किसका है, किसका दोष है, हमारा हम बच्चों का। तो जब तक हम बच्चे तैयार नहीं हुए हैं तब तक विनाश कैसे होगा, इसीलिए बाबा से जब कोई अभी हमारी मोहिनी दीदी है ना जो अभी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी है, तो मोहिनी दीदी से किसी ने पूछा था प्रश्न अमेरिका में कि क्योंकि इतने हथियार बन गए तो आप क्या समझती हो विनाश कब होगा, क्योंकि बटन दबाने की देर है, अभी तो कोई लश्कर की भी जरूरत नहीं है, सब इतना सहज हो गया, इतने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र तैयार हो गए, तो आपको क्या लगता है कब विनाश होगा, मोहिनी बहन से पूछा। तो उसने कहा देखो विनाश करना ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम है स्थापना करना, विनाश करने का काम वो राष्ट्रपति से पूछो, उनके पास बटन है जैसे बटन दबाएगा तो सब तैयार है, सारे हथियार चलने के लिए तैयार है, इसीलिए वो विनाश हम नहीं करने वाले हैं, पर हाँ हमसे ये पूछ सकते हो कि स्थापना कब करनी है। हम दादी जानकी जी का बहुत सुंदर मिसाल देते हैं, दादी जानकी क्योंकि जब दादी जानकी ज्ञान में आई थी ना शुरू शुरू में तो बहुत लज्जा करती थी, बहुत लज्जा, जास्ती बोलना नहीं कुछ नहीं, एकदम शांत शांत रहती थी, बहुत शांत रहती थी, परंतु बाबा की मुरली से बहुत प्यार, तो जब बाबा की मुरली चलती थी तो सामने बैठती थी, जैसे ये बैठी है ना बिल्कुल ऐसे बैठती थी और बाबा की मुरली सुनती थी और ऐसे करती रहती थी। तो बाबा ने एक दिन उसको कहा क्या तुम पिजिन हो, पिजिन माना कबूतर हो, कबूतर क्या करता है ऐसे करता है ना, क्या तुम पिजिन हो, खाली ऊ करती हो, तो आप जो सुनती हो वो दूसरों को सुनाती हो, जो बाबा की मुरली सुनती हो बहुत प्यार से सुनती हो, बाबा देखते हैं लेकिन दूसरों को सुनाती हो, तो कहती नहीं बाबा मैं तो खाली सुनती हूँ। बाबा ने कहा नहीं तुमको जो तुम बाबा की मुरली सुनो ना दूसरों को सुनाओ, दूसरों को सुनाओ। तो उसने कहा ठीक है बाबा, तो जो बाबा की मुरली चलती थी जो पॉइंट्स बाबा देते थे वो हूबहू वैसे दूसरों को सुनाती थी। तो एक दिन बाबा ने उनसे पूछा तुम दूसरों को सुनाती हो, तो कहा जी बाबा आप जो सुनाते मैं दूसरों को सुनाती हूँ। अच्छा क्या सुनाती हो, तो जो बाबा की मुरली में चला वही सुनाती है। तो बाबा ने कहा तुम क्या पैरेट हो, पैरेट होता है ना तोता, तोता तो तोता क्या करता है, जो जो उसने सुना वो ही सुनाता है, बस उसकी अपनी बुद्धि तो है नहीं, इसलिए तोते के लिए कहानी बताते ना, वो नलके पर बैठता है, नलका खोलता है, अपने आप को भिगोता है और उसका मालिक कहता है गंगाराम नलके पर मत बैठो, और वो नलके पर बैठकर बोलता जाता है और पानी गिराता जाता है और अपने ऊपर डालता है और बोलता भी जाता है गंगाराम नलके पर नहीं बैठो। तो बाबा ने उसको कहा तुम तोता हो क्या, जो बाबा कहते हैं वो तुम सुनाती हो, तुमको अपना विचार सागर मंथन करना चाहिए, मुरली में से विचार सागर मंथन करके नई नई पॉइंट्स निकालो, मनन करो, चिंतन करो, मंथन करो, विचार सागर मंथन करो और अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकालो, तो वो करके फिर सुनाओ। तो वो फिर सुनाने लगी, तो पहले तो पिजन बनी, फिर पैरट बनी, फिर तो जब विदेश जाने लगी, बाबा ने उनको विदेश भेजा, तो उस समय तो क्या उनको नशा था, कितना देशों में गई, एक एक देश में जहाँ जहाँ गई दादी जानकी, वहाँ पर सेंटर खोल दिया। तभी तो इतना 140 देशों में बाबा के सेंटर खुले, ये सब दादी जानकी जी की कमाल थी, जहाँ इतनी तपस्या उनकी चली और बाबा दादी के पांव पड़े और वहाँ सेंटर खुल गया। तो दादी क्या कहती थी, तो दादी कहती थी मैंने एक कंधे पर ब्रह्मा बाबा को बिठाया, एक कंधे पर शिव बाबा को बिठाया, जैसे हनुमान लक्ष्मण और राम को बिठाया था ना, तो मैं भी शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को अपने कंधे पर बिठा करके मैं उड़ रही हूँ। तो ये दादी की विशेषता थी, दादी जानकी की। तो फिर दादी ने कहा कि देखो अभी तो मैं बाबा मुझे जहाँ उड़ाता है, जहाँ भेजता है, मैं जाती हूँ और बाबा की सेवा करती हूँ। तो मैं तो अभी बाबा की कठपुतली बन गई, कठपुतली बना, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कठपुतली, पपेट कहते हैं उसको। तो पहले पिजिन बनी, फिर पैरेट बनी, फिर पपेट बन गई। पपेट बन की जो कठपुतली होता है ना, वो खुद उसको उसका अपने में जान नहीं है, वो रस्सियों के आधार से हाथ पैर वो खींचता है ऊपर वाला, और वो हाथ पैर चलाती कठपुतली। तो कठपुतली बन गई, बाबा चला रहा है, बाबा उड़ा रहा है, बाबा दौड़ा रहा है, और मैं कर रही हूँ। मैं तो खुद मेरी दादी की शक्ति के, मेरी में तो शक्ति नहीं, शरीर की शक्ति दादी की कहाँ थी, इतनी दुबली पतली है ना इतनी, और खाती भी क्या थी, लेकिन बाबा उसको उड़ाता था। तो कहा अभी मैं पपेट बन गई हूँ। फिर आपको याद होगा एक दिन बाप दादा ने क्लास में पूछा कि जो समझते हैं हम तैयार हैं वो हाथ उठाओ, तो कोई नहीं उठाया। तो फिर बाबा ने पूछा कि कब तक तैयार होंगे, कब तक, डेट बताओ। तो उस समय जो कोई महाराज सामने बैठे थे, महाराज थे, उन्होंने कहा बाबा अभी ये सीजन पूरी होगी ना तो हम सब तैयार हो जाएंगे, सब तैयार हो जाएंगे, संपूर्ण बन जाएंगे। तो बाबा ने उससे कहा तो क्या तुमने सबका ठेका उठाया है, सबका ठेका उठाया है, जो कहा कि सब हाँ हो जाएंगे हम सब संपूर्ण इस सीजन के अंत में, तो सबका ठेका उठाया। अभी वो सबका ठेका कहाँ उठाएगा भाई, हर एक का तो अपना अपना पार्ट है। तो बेचारा वो सहम गया। फिर दादी जानकी से पूछा कि आप बताओ, डेट बताओ, कब तक तैयार होंगे, कब बाबा गेट खोले आप। तो दादी ने कहा बाबा मैं तो तैयार हूँ, मैं अपने लिए कह सकती हूँ, दूसरों के लिए नहीं कह सकती हूँ, मैं अपने लिए कह सकती हूँ, बाबा आप जब भी बुलाओ मैं तैयार हूँ। तो दादी ने तो बाबा ने दादी को कहा तुम अकेली जाओगी क्या तुम अकेली जाओगी क्या, तुमको तो सबको लेके जाना है। तो फिर कहा दादी ने अब मैं पायलट बन गई, पायलट होता है ना वो हवाई जहाज चलाता है, वो एक ही चलाता है, और देखो इतने सारे लोग, 500 लोग हवाई जहाज में होते हैं और 500 लोगों को लेके जाता है, तो पायलट का ये काम है। अब मैं पायलट बन गई और सबको कैसे दादी भारत में, फिर दादी जी के जाने के बाद कितने साल दादी जानकी जहाँ देखो आज यहाँ गई आज वहाँ गई, भारत में गई, पहले विदेशों में गई फिर भारत में कितनी तरफ गई। तो देखो अंत तक दादी ने इतनी सेवा की, तो पायलट बन करके सेवा की। फिर कभी तो कई कहते दादियां चली गई, ये चली गई, अब तो बाबा ने सबको तैयार किया है, दादियाँ चली नहीं गई है, आती है, बाबा कहते हैं रोज सैर करने आते हैं अमृत वेले, तो इसीलिए चले नहीं गई, अभी तो और सेवाएं बढ़ रही है, और सेवाएं, कितनी सेवाएं पड़ेगी अंत में, बाबा कहते हैं तुम्हारी प्रत्यक्षता होगी, जय जयकार होगी, तो जय जयकार होने के लिए हम तैयार तो होंगे ना, तभी तो जय जयकार होगी। अभी तक तो क्या कहते थे लोग, पहले तो सुनने को तैयार नहीं होते थे ज्ञान, फिर धीरे धीरे सुनने को तैयार होते गए, अभी फिर क्या कहने लगे, आप लोग बहुत अच्छा सुनाते हो परंतु हम नहीं कर सकते, लेकिन अभी क्या समझते हैं कि नहीं नहीं अभी तो समय आ गया, हमको भी करना होगा। कई कहते थे कि भाई आप लोग ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते हो, पर वो भी बहुत अच्छा सुनाते हैं, वो संस्था में भी बहुत अच्छा सुनाया जाता है, तो वो भी सुनाते आप भी सुनाते हो, लेकिन बाबा कहते अंत का समय आएगा जब वो कहेंगे आप ही सुनाते हो, अच्छा आप ही, अभी तक तो वो भी कहते हैं। हाँ, ताली बजाओ अपने लिए जी, क्यों नहीं, तो इसीलिए आप भी, तो आप ही, तो बाबा कहते तब तो जय जयकार होगी ना, कि ये ब्रह्मा कुमारियां ही सब कुछ कर सकते, अभी देखो सब मानने लगे, राजनेताएं भी हाथ जोड़ देते हैं, हम जो नहीं कर सकते हैं वो आप लोग कर सकते हो, और हम आप मिल करके करेंगे, अभी वो सब मिल करके करने को तैयार हो गए, MOU साइन करते रहते हैं हा? तो देखो ये बाबा की कमाल है, ये सब कौन करा रहा है, हम बच्चे कैसे बाबा के हाँ बनते जाते, तो फिर बाप समान बनना है, उड़ती कला का अनुभव करना है, तो ये सब जो कुछ भी है बाप समान बनने की तैयारी, फिर जैसे ही बाप समान बने तो संपूर्ण बनना है, ब्रह्मा बाप संपूर्ण बन गए, तो ब्रह्मा बाप कैसे संपूर्ण बन गए, जो बाबा के लास्ट दिन थे बिल्कुल न्यारे और प्यारे, इतने न्यारे प्यारे होते गए होते गए होते गए, वही दादियों को हमने देखा, नहीं तो दादी प्रकाशमणि इतनी एडमिनिस्ट्रेशन संभालती थी, हर एक चीज पर ध्यान देती थी, हर एक चीज पर, लेकिन धीरे 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 न्यारी होती गई दादी, होती गई होती गई, पहले दादी जी से हम सब कुछ पूछते थे, दादी ये करे वो करे, दादी सब कुछ बताती थी, इतना पूरा वो मैनेजमेंट सारा करती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उपराम होती गई, दूसरों ने वो जिम्मेदारी उठा ली, उठाते गए उठाते गए, और लास्ट के दिनों में तो देखा, सोचते थे दादी से ये पूछेंगे ये पूछेंगे ये पूछेंगे, लेकिन जैसे दादी के पास जाते थे ना, तो दादी से लगता था बस दादी से दृष्टि ले बस, और कुछ नहीं, और बातें पूछने की दिल भी नहीं होती थी, भूल ही जाते थे, तो बाबा के आगे भी ऐसा ही था, भूल जाते थे कि बाबा को कुछ कहना भी है कुछ पूछना भी है, बस दृष्टि लेते रहे ऐसे ही, सब कुछ भूल जाते थे, तो वो अंतिम स्थिति थी, तो इसको कहते हैं तो दाद कैसे बेहद की वैराग्य वृत्ति आती गई, न्यारे प्यारे होते गए, तो वैराग्य बहुत जरूरी है, नहीं तो अंत काल में वो सब याद आएगा, अगर वैराग्य वृत्ति नहीं है तो अंत काल में याद आएगा सब कुछ, इसलिए बाबा कहते हैं अंत में कुछ भी याद ना आए बाबा के सिवाय, पर वो तब आए होगा जब बहुत काल का अभ्यास होगा, बहुत काल का अभ्यास होगा, अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं है तो अंत में वो याद नहीं आएगा बाबा, तो बहुत काल का अभ्यास होगा तो तभी हम एवर रेडी कहला सकेंगे, एवर रेडी जो बाबा कहते हैं ना, सदा तैयार, बस बैग बैगेज तैयार, बस जब कहा जाए चल चल पड़े, क्योंकि जो कुछ भी होना है अचानक होना है, देख रहे ना, अचानक, तो अचानक होना है, तो अचानक होने के होना है, इसीलिए बाबा कहते हैं एवर रेडी रहना है, सदा तैयार, कभी भी बाबा उठा ले भी तैयार है, ऐसे है, ऐसे है, या कोई याद आएगा दोता पोता, हमारी माताओं के लिए बाबा ने उस दिन भी कहा ना, वो मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है मूल बच्चे तो बड़े हो गए, तब उनके जो बच्चे ना उसमें मोह अटक जाता है, अपने बच्चों से मोह निकल करके पोतरे दोतरों में मोह चला जाता है ना, जब बैंक में पैसा डालते हैं तो जितना पैसा डाला है वो तो पता है कि है, लेकिन जब भी पासबुक देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि इंटरेस्ट कितना आया, ब्याज कितना आया, तो ब्याज तरफ नजर जाती है। तो पोतरे दोतरे क्या है? हाँ, पोते दोते क्या है? हाँ, ये ब्याज है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं फिर फरिश्ता कैसे बनेंगे? उसके बाद संपन्न बन के फरिश्ता बनना है। फर्शा फरिश्ता माना जिनका फर्श से कोई रिश्ता नहीं। फिर फरिश्ता बन के फिर क्या करना है? हाँ, कैसे बनेंगे फरिश्ता? आपके सब क्लासेस होने हैं, ये सब अलग अलग क्लासेस होंगे 3 दिन। फिर बाबा कहते हैं फरिश्ता बन के सब बोझ खत्म करके फिर घर जाना है। अब घर जाने के लिए बिंदु बनना पड़ेगा। सारा जो भी बंधन है, जो कुछ भी हिसाब किताब पापों का है, वो सब खत्म करना होगा योग बल से, नहीं तो सजा बल होगी। सजा बल से खत्म होगा फिर कितना मिलेगा? पद कुछ भी नहीं मिलेगा। तो केवल देवता बनना नहीं है, फिर बाबा कहते लक्ष्मी नारायण बनना है। देवता बनना तो दास दासी भी देवता कहलाएंगे, तो दास दासी थोड़ी बनना है। क्या बनना है माताओं को? हाँ, देवता। बस देवता में भी कौन सा देवता? लक्ष्मी नारायण, राम सीता भी नहीं जी। हाँ, इसीलिए देवता बनना। तो देखो कहाँ से कहाँ तक बाबा पहुंचाते, लेकिन उसके बीच में देखो कितनी पड़ाव है। इन पड़ावों से पार होते 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 हम जाके देवता बनेंगे। तो अभी कहाँ पहुंचे हैं? अपने आप से पूछो। यात्रा पर चल रही है ना, अभी मंजिल बहुत दूर लगती है या नजदीक है? क्या लगता है? जो समझ अभी भी बहुत दूर है वो हाथ उठाओ। नहीं, नजदीक है। हाँ, बस पहुंचे कि पहुंचे ऐसे। चलो बहुत अच्छा। तो अभी आप सबको बहुत बहुत मुबारक है, बहुत बहुत बधाई है। बाबा के घर में आए हो। हम तो कई बार पूछते हैं कि आप लोग जो आए हो उसमें कई भाई बहने होंगे जिनका 2 दिन पहले तक नाम नहीं था, पर अचानक बहन जी ने कहा आपको जाना है और आप तैयार हो गए। ऐसे भी होगा ना? ऐसे है जो अचानक बोला और तैयार हो गए? देखो अचानक तैयार हो गया। हाँ, और कई ऐसे होंगे जिनका नाम था, सब कुछ था, तैयार भी हुए और अचानक प्रोग्राम कैंसिल हो गया। वो भी हुआ होगा ना, वो भी हो गया होगा। तो हम क्या कहते हैं? हम यही कहते हैं कि आज जो आ गए वो सबसे भाग्यशाली। अपने भाग्य को सराहो और उसके लिए ताली बजाओ। अब अगले 3 दिन आपको क्या करना है वो भी आपको बताया जाएगा। किन नियमों का भी पालन करना है? पहले तो मुख का मौन, मन का मौन और मोबाइल का मौन। हम कहते 3 म को बंद करो। मन का मौन रखो, मुख का मौन रखो और मोबाइल का मौन रखो। हाँ, माताएं मोबाइल तो रखती है ना, हर एक के पास होगा, चलाना आता है ना ठीक ढंग से। देखो माताएं सब बैठी है, हमारी माताएं तो जवानों से भी जवान है। देखो नीचे बैठी है और जवान पीछे बैठे और माताएं नीचे बैठी है। हाँ, वो पीछे बैठते तो इन माताओं के लिए वो भाई ताली बजाओ। देखो तो जवान कुर्सियों पर बैठे और माताएं नीचे बैठी है। तो ये है हमारी कैथल की माताएं। तो बाबा माताओं को देख करके बहुत खुश होते थे। बाबा कहते थे मेरी हमजिन्स आई है। बाबा भी बूढ़े थे ना, तो बाबा के सामने भी कही थे मैं तो बूढ़ तो ये थोड़ी थोड़ी बूढ़ी माताएं कैसी रहती है। तो दादी को दादी भी देख के इतनी खुश होती थी। ब्रह्मा बाबा इतने खुश होते थे। जो कोई है 80 साल से ऊपर? अच्छा, देखो 80 साल से ऊपर। वाह भाई, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। 80 साल से ऊपर, देखो इनके लिए ताली बजाओ। बहुत अच्छा। बाकी 70 के ऊपर तो बहुत होंगे। जो 70 के ऊपर है, देखो भाई भी माताएं 70 से कम हो क्या? कम हो? जो 60 से ऊपर है वो तो बहुत होंगे। 60 से ऊपर तो काफी होंगे। ये 60 से भी कम है उम्र? कितनी उम्र है? हाँ? क्या बोलती है? 70? अच्छा अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बाकी तो बहादुरगढ़ के भी बहुत भाई बहन यार, आपका फैमिली है, फैमिली है। हमारे ये सुरेंद्र भाई, जरा खड़े हो जाओ। सुरेंद्र भाई बहादुरगढ़ से आए हैं। इनकी इनकी क्या विशेषता है, अपने परिवार की इतनी सेवा करते हैं, हमेशा उनको शिविर में लाते हैं, भट्टी में लाते हैं, उनको आप सामान बनाते हैं, इतनी सेवा करते हैं, फिर ये बिजनेस करते हैं, तो फिर उनकी सेवा करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, बस सेवा सेवा सेवा, इनकी सेवा तो और कुछ बुद्धि में है ही नहीं, है ना। ऐसे सुरेंद्र भाई बहुत, तो सब इनके फैमिली मेंबर्स, सब रिश्तेदारों को लाए हैं। फिर से हाथ उठाए सब सुरेंद्र भाई के साथ जो आए, खड़े हो जाएं जी। अभी और भी आएंगे? अच्छा अच्छा, अभी आपकी युगल कहाँ है? अच्छा, पैर में, घुटनों में प्रॉब्लम है? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छा। सभी को बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई। अच्छा,
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, बहुत ही अच्छे से पूरे यज्ञ की हिस्ट्री के साथ आदिकाल से दीदी ने हमें पूरा ही नजरों के सामने ले आए, हिस्ट्री के साथ साथ हमारा लक्ष्य और उद्देश्य बताया, कैसे बाबा मामा दादियाँ किस तरह से उन्होंने पुरुषार्थ करके संपूर्णता को पाया, वो हमें इस भट्टी से संपूर्णता को पाने का लक्ष्य दे दिया। आप लोग सभी बहुत बहुत भाग्यशाली हैं जो यहाँ पहुँचे हैं। बहुत लोग मधुवन की भट्टी में आने के लिए वर्षों से क्यू में हैं। आप सभी का नंबर लगा, इसीलिए बहुत लकीएस्ट हैं। समय अनुसार इसका पूर्ण रूप से फायदा ले लें। और अभी आप सभी के स्वागत में हमारा मधुर वाणी ग्रुप तैयार है कि हमारे सतीश भाई जी और टीम, ये बाबा हल्दर भाई, हल्दर भाई, वीरेंद्र भाई, निरंजन भाई, सतीश भाई, तो ये बाबा के बहुत पुराने बच्चे हैं और कैसे गीत बनाते हैं, कल उन्होंने सुनाया जगदीश भाई उसको वेरीफाई करते थे, तो ये बाबा के अनन्य रतन एवर रेडी रहते हैं और बड़े सदा बाहर रहते हैं, हर पल हर घड़ी स्वागत करने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद है। और सतीश भाई बहुत पुराने भाई हैं, आपने बहुत अच्छी टीम तैयार कर ली है, तो अभी आपसे निवेदन है, स्वागत में आप जो शब्द सुनाए।
ओम शांति।
ओम शांति।
मधुबन में आने से ही सहज योग लग जाता है और बड़े भाग्यवान वाले होते हैं, भाग्य वाले होते हैं जिनको मधुबन में आने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है। और आज हरियाणा की धरती में, धरती से, कैथल से हमारी पुष्पा बहन भी, उनकी पूरी टीम आई है, तो पुष्पा दीदी के पुष्पों पर बाबा प्रेम के पुष्प बरसा रहे हैं, इसलिए भी अभिनंदन है। और सुरेंद्र भाई बहादुरगढ़ वाले बहादुरों को लेकर के आए हैं, इसलिए भी उनको बहुत बहुत स्वागत।
शीतल सी ठंडी हवाएं, कितने प्यारे नजारे हैं, आंगन में बाबा खड़े हैं, अपने बाहें पसारे हैं। बहादुरगढ़ और कैथल वाले मंद मंद मुस्काए हैं, किस्मत वाले भट्टी में आए, बाबा भी हर्षाए हैं, अरे बाबा भी हर्षाए हैं।
थल वाले आए हैं और बहादुरगढ़ वाले भी दिल की लगन लगाए हैं। सुरेंद्र भाई बहादुरगढ़ के बहादुरों को लाए हैं। पुष्पाजी के पुष्पों पर पापा पुष्प बरसाए हैं। आपके सुंदर स्वागत में मधुबन वाले हर्षाए हैं। आपके सुंदर स्वागत में मधुबन वाले हर्षाए हैं।
बाबा कहते हैं उधर हाहाकार है और इधर जय जयकार, समय नहीं है।
उधर विनाश के बजे नगाड़े चारों ओर है हाहाकार। उधर विनाश के बजे नगाड़े चारों ओर है हाहाकार। दिखने लगे नवयुग के नजारे गूंजने वाला जय जय का। दिखने लगे नवयुग के नजारे गूंजने वाला जय जय का। ज्वाला जलाने सही समय पर अपने कदम बढ़ाए हैं। आपके सुंदर स्वागत में मधुबन वाले हर्षाए हैं। तपो भूमि में तप करने कैथल वाले आए हैं और बहादुरगढ़ वाले भी दिल की लगन लगाए हैं। मधुबन में आने से ही सहयोग लग जाता है। मधुबन में आने से ही सहयोग लग जाता है। मानव भवन का कण कण भी बाबा की याद दिलाता है। मानव भवन का कण कण भी बाबा की याद दिलाता है। बाबा मम्मा दीदी दादियां मधुबन को महकाए हैं। आपके सुंदर स्वागत में मधुबन वाले हर्षाए हैं। तपो भूमि में तप करने कैथल वाले आए हैं और बहादुरगढ़ वाले भी दिल की लगन लगाए हैं। गुफा में इतनी शक्ति भरना है। अंतर्मुख हो मौन गुफा में इतनी शक्ति भरना है। 14 वर्ष वाली भर्ती इन 4 दिनों में करना है। 14 वर्ष वाली भर्ती इन 4 दिनों में करना है। शशि दीदी शीतु दीदी विजया दीदी भी सुनाए हैं। आपके सुंदर स्वागत में मधुबन वाले हर्षाए हैं। तपो भूमि में तप करने कैथल वाले आए हैं और बहादुरगढ़ वाले भी दिल की लगन लगाए हैं। आपके सुंदर स्वागत में मधुबन वाले हर्षाए हैं। आपके सुंदर स्वागत में मधुबन वाले हर्षाए हैं।